4 जनवरी शुक्रवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। संसद में रफाल डील पर घमासान, रक्षा मंत्री की सफाई।
इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 23 सितंबर 2016।
कांग्रेस ने दोहराए आरोप।
प्राइस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीक्रेट पैक्ट।
आपने एक बार नहीं बोला, अनिल अंबानी का आपने नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया?
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के फैसले मुख्यमंत्री कमलनाथ के निशाने पर, और विवेचना में करेंगे बात एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की।
मनमोहन सिंह जी ने मान लिया था कि पार्टी के प्रेसिडेंट का पोजीशन प्रधानमंत्री से ज्यादा है।
सब विस्तार से पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में रफाल डील के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का भाजपा सरकार पर भारतीय कंपनी एचएएल की अवहेलना करने का आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर रक्षा सौदे किए हैं। कांग्रेस रफाल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। कांग्रेस की मांग है कि संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराई जाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई अब 10 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया जा सकता है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की साल 2010 के फैसले के सुप्रीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की 3.25 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांटने का फैसला दिया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े जाने माने वकील एचएस फुलका ने कहा है कि 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस छोड़कर सभी पार्टियों ने उनका साथ दिया है। फुलका ने बीते कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी वजहों के बारे में बताया।
अब जब 5 साल के पॉलिटिक्स के तजर्बे ने ये दिखलाया कि जो फैसला 2012 में किया गया था कि इस मूवमेंट को पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया जाए, मेरा जो अपना विचार है कि शायद वो फैसला सही नहीं था।
एचएस फुलका के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकार जमाल खाशुजी की हत्या के सिलसिले में सऊदी अरब की एक अदालत में शुरू की गई सुनवाई की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने कहा कि अदालती कार्यवाही की निष्पक्षता के बारे में सही सही कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि हर सूरत में ये नाकाफी ही होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निष्पक्ष जाँच कराए जाने की जरूरत है।
We are not present in Saudi Arabia to be able to assess these trials, we can't give an assessment of the trials ourselves.
सऊदी अरब में चल रही इस अदालती कार्यवाही की निष्पक्षता जांचने के लिए हम वहां पर मौजूद नहीं हैं, और इस कारण हम इसकी निष्पक्षता के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि खाशुजी की हत्या के मामले में हम महीनों से न्याय की मांग कर रहे हैं, और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जाँच चाहते हैं, जो अब तक नहीं हो सका है। हम जानते हैं कि इस सऊदी अरब में मामला चलाया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है, और हर हाल में हम मौत की सजा के खिलाफ हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था की प्रवक्ता रवीना शमदसानी के शब्द। श्रोताओं को बता दें कि जमाल खाशुजी हत्या मामले में रियाद में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई है। इसमें 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से 5 के लिए सरकारी अभियोजक ने मौत की सजा की मांग की है। ईरान ने कहा है कि वो जल्द ही अटलांटिक के लिए नौसेना का एक बेड़ा रवाना करेगा। सेना के एक एडमिरल के अनुसार ये बेड़ा करीब 5 महीने वहां रहेगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जहाजी बेड़ा वेनेजुएला को अपना केंद्र बनाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि अटलांटिक में पैर रखने की ईरान की कोशिश को उसका विरोधी देश अमरीका शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर ले सकता है। हाल में ईरानी सेना के एक आला अधिकारी ने भी कहा था कि अगर अमरीकी नौसेना के जहाज ईरान के नजदीक से होकर गुजर सकते हैं, तो ईरानी जहाज भी अमरीका के बगल से जा सकते हैं। स्वीडन के एक अस्पताल में इबोला वायरस से ग्रस्त एक मरीज की पहचान की गई है। बीबीसी समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा में आज रफाल विमान सौदे पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रफाल सौदे में सरकार की भूमिका को सही ठहराते हुए धांधली के विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल विमान की कीमत बढ़ाए जाने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जगह अनिल अंबानी की कंपनी को मौका दिए जाने पर रक्षा मंत्री से जवाब देने की मांग की। पूरा ब्यौरा BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की जुबानी।
कल सदन के स्थगित हो जाने की वजह से राफेल लड़ाकू विमान खरीद में कथित घोटाले पर जो बहस ना हो पाई थी वो आज लगभग 5 घंटे तक जारी रही। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, TRS और अन्य के बाद लोकसभा में बारी आई विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे ने तारीखों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि लड़ाकू विमान खरीद में 1,30,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने जिस कीमत पर लड़ाकू विमानों की खरीद की है वो दूसरे मुल्कों को बेचे गए इन्हीं विमानों की कीमत से बहुत अधिक है।
कतार और इजिप्त को हमारे से कम दामों में बेचा गया है।
खड़गे ने कांग्रेस के उसी आरोप को दोहराया कि पुरानी कीमत 526 करोड़ रुपए प्रति विमान थी, लेकिन बाद में फ्रांसीसी कंपनी दसों को प्रधानमंत्री की पहल पर 1600 करोड़ रुपए प्रति विमान दिए गए और अनिल अंबानी को वो ठेका दिलवाया गया जिसके तहत लड़ाकू विमान का कुछ काम भारत में होना है। कांग्रेस के एक और वक्ता के बाद बारी थी बोलने की BJP नेता अनुराग ठाकुर की।
कांग्रेस पार्टी को 20 दिन से ज्यादा समय तैयारी के लिए लग गया, चर्चा करवाने के लिए, अपने नेता को खड़ा करने के लिए, और जब खड़ा भी किया तो एक कंफ्यूज और करप्ट नेता को खड़ा कर दिया। चर्चा करने के लिए भी कोई ईमानदार नहीं मिला। एक ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को जो करप्ट भी है और बेल पर बाहर भी है।
NDA के सहयोगी अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा का भाषण भी इससे कुछ आगे नहीं बढ़ पाया।
उन्होंने सबसे बड़ी चिंता इस बात की करी कि यह सौदा फ्रांस से क्यों हुआ। मुझे एक प्रेस वाला दोस्त बता रहा था कि अगर इटली से हुआ होता तो शायद ये इतना इतराज ना करते।
3 बजे दिन के आसपास बोलने को खड़ी हुई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने सदन को बताया कि कांग्रेस ने 10 सालों से अधिक तक विमान खरीदी के मामले को लटकाए रखा था, जबकि ये प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय कोई सौदा हो ही नहीं पाया था, इसलिए बाद में नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की तरफ से किसी तरह के बदलाव किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा,
द इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 23rd सितंबर 2016 एंड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट will be delivered in 3 years from that date and the last aircraft will come in 2022.
लेकिन विमान किस कीमत पर खरीदा गया और अनिल अंबानी कैसे सौदे का हिस्सा बन गए, इस पर रक्षा मंत्री सीधे कुछ नहीं बोली। ये दो सवाल जो विपक्ष बार बार उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। शिवसेना जो BJP की सहयोगी दल है उसने भी कहा है कि सरकार को संसदीय समिति बनाकर और इन बातों का जवाब देकर विपक्ष को खामोश कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने बाद में सदन में बोला,
Price is not a part of the secret pact.
आपने एक बार नहीं बोला अनिल अंबानी का आपने नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? और आपने 2 घंटे बाद।
फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की नई सरकार पुराने सरकार के फैसलों को बदल रही है। सरकार ने वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता पर पहले तो रोक लगाई, लेकिन विवाद बढ़ता देखकर इसे नए स्वरूप में शुरू करने की बात कही। इसके बाद मीसा बंदियों को मिलने वाली पेंशन और शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाले स्मार्ट कार्ड पर भी रोक लगाई गई है। भोपाल से शूर नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता संभाले अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन सरकार के निर्णय लगातार विवाद पैदा कर रहे हैं। प्रदेश के राज्य सचिवालय में महीने की पहली तारीख को राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता था, लेकिन इस बार नए साल में यह नहीं हुआ। इसको लेकर विपक्षी भाजपा सामने आ गई और कांग्रेस को निशाना बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं,
हर महीने की पहली तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया था कि बल्लभ भवन के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वंदे मातरम गाया जाएगा। मुझे कहते हुए वह तकलीफ है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही वंदे मातरम के गान की परंपरा को समाप्त कर दिया। वंदे मातरम गान नहीं गाया गया। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देशभक्ति और देश सब दलों से ऊपर है, सब सरकारों से ऊपर है।
विवाद इतना बढ़ा कि सरकार ने इसे नए रूप में लागू करने का फैसला किया। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान हर महीने की पहली तारीख को किया जाएगा और इससे आम जनता भी जुड़ेगी। वहीं कांग्रेस भाजपा के विवाद पैदा करने पर सवाल उठा रही है। मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं,
वंदे मातरम से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना। ये वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का एक स्लोगन था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में वंदे मातरम कह के जेल गए और फांसी पर चढ़ गए। इनका एक आदमी बता दें आज की तारीख में जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हो।
इसके साथ ही सरकार ने मीसाबंदियों को मिलने वाली पेंशन पर भी रोक लगा दी है। प्रदेश में लगभग 2600 मीसाबंदियों को हर माह 25,000 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का खर्च हर साल आ रहा था। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि इसका फायदा ज्यादातर आरएसएस और भाजपा से जुड़े नेता उठा रहे थे। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का आरोप है कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है।
देखिए, मीसाबंदी इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले वो प्रहरी थे जिन्होंने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए त्याग किया। यदि ऐसे मीसाबंदियों के खिलाफ सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी तो ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई होगी और इसको सहन नहीं किया जाएगा।
वहीं सरकार ने एक अन्य निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो वाले संबल योजना के लिए बने स्मार्ट कार्ड को बांटने पर रोक लगा दी है। यह कार्ड प्रदेश के 1,80,00,000 मजदूरों को बांटे जाने थे। इस पर अनुमानित खर्च 18 करोड़ रुपए आया था। अब नए कार्ड बगैर मुख्यमंत्री की फोटो के छपवाए जाएंगे। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 4.5 वर्ष में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री की कमजोरी बताता है। क्या सरकारी मीडिया में मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वाले मीडिया से कतराते हैं? क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये रवैया सही है? नए साल के पहले बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 5 जनवरी शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज होने के बाद खासा बवाल मचा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म के जरिए पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आज की विवेचना में रेहान फजल इस किताब में मनमोहन सिंह के जीवन पर बताए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र दौड़ा रहे हैं।
अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल पर किताब लिखने वाले उनके प्रेस सलाहकार रहे संजय बारू की बात मानी जाए तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंधों की पहली परीक्षा हुई थी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के भीतर, जब मनमोहन सिंह को 15 अगस्त 2004 को लाल किले से देश को संबोधित करना था। बारू से कहा गया कि वो भाषण से एक दिन पहले उसके ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लें। जब वो लाल किले पर पहुंचे तो उन्होंने जिज्ञासावश मनमोहन सिंह के भाषण के दौरान होने वाले सिटिंग अरेंजमेंट पर नजर दौड़ाई। भाषण मंच से थोड़ा पीछे उनकी पत्नी गुरशरण कौर की कुर्सी थी। उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कुर्सियां थी। पहली पंक्ति में सोनिया गांधी की कुर्सी नदारद थी। जब बारू ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी से पूछा कि सोनिया गांधी को कहां बैठाया जाएगा तो उसने चौथी या पांचवीं पंक्ति की तरफ इशारा किया जहां उनके बगल में नजमा हिप्तुल्ला बैठने वाली थी। बारू ये सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने मन में सोचा कि इससे मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत शर्मिंदगी होगी और सोनिया भी अपमानित महसूस करेंगी। बहरहाल अंतिम समय पर सोनिया की सीट बदलकर उन्हें सबसे आगे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठाया गया। संजय बारू ने मनमोहन सिंह को कहते बताया है कि उनकी नजर में पार्टी अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने संजय बारू से पूछा कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंधों में सिर्फ यही एक जटिलता थी या कुछ और भी।
काफी साफ साफ संबंध था। मनमोहन सिंह जी भी बहुत आदर के साथ उनसे बर्ताव करते थे और सोनिया जी भी उनको एक एल्डरली पर्सन के माध्यम से देखते थे। मेरे ख्याल में उनके बीच में कोई गड़बड़ ऐसा नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने मान लिया था कि पार्टी के प्रेसिडेंट का पोजीशन प्रधानमंत्री से ज्यादा है। ये पहली बार ऐसा हो चुका है हमारे देश में। आचार्य कृपलानी ने जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1950s में और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा उन्होंने कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे बताएंगे कि सरकार में आप क्या करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य कृपलानी से कहा, सॉरी आई कैनॉट टेल यू। प्रधानमंत्री जो सरकार में होता है वो बाहर किसी से नहीं बता सकेंगे। अगर आपको जानना है कि सरकार क्या कर रही है तो आप मंत्री बन जाइए। और नेहरू ने कृपलानी को मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का पोजीशन भी ऑफर किया था ताकि वो कैबिनेट में बैठे और जानकारी पाएं कि सरकार में क्या हो रहा है। जब कृपलानी कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देके वो हट गए, जब से ये पोजीशन रहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख हैं, तो मेरा कहना ये है कि जो सिस्टम ये सरकार ने चलाया जहां प्रधानमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट से एक पद नीचे का स्वीकार कर लिया, वो गलत था।
बारू बताते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात की छूट नहीं थी कि वो अपनी टीम का खुद चयन करें। सोनिया गांधी का ये भी प्रयास रहता था कि सरकार की जो भी सामाजिक नीतियां थीं, उसका भी श्रेय प्रधानमंत्री को न मिलकर पार्टी को मिले। मैंने संजय बारू से पूछा कि क्या इसके जरिए सोनिया गांधी कहना चाह रही थी कि हु इज द बॉस।
वो सोनिया जी की कोशिश नहीं थी, पार्टी के नेताओं की कोशिश थी। उनका ये मानना था कि पार्टी इज द बॉस। ये चर्चा होता था हर वक्त, पार्टी प्रेसिडेंट हैज टू बी नंबर वन।
और प्रधानमंत्री की तरफ से वो बिल्कुल पैसिव थे, उनकी तरफ से कोई इस पे ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
नहीं था।
राजनीतिक रूप से बहुत नजदीकी से काम करने के बावजूद सोनिया और मनमोहन के बीच सामाजिक दूरी थी और वो दोनों आपस में बहुत घुलमिल नहीं पाते थे।
दोनों परिवारों में आना जाना बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं कभी नहीं जानता हूँ कि वो सिर्फ चाय पे आके मिले हैं परिवार के साथ। काम पे मिलते थे, फंक्शंस में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे, पब्लिक इवेंट्स में मिलते थे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सिर्फ बैठ के कुछ बातचीत करें, गपशप करें। ऐसा सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं था और उनके परिवारों में तो असल ही नहीं था। मनमोहन सिंह के 3 बेटियाँ हैं, उनके बीच और प्रियंका और राहुल गांधी के बीच कोई ऐसा, मुझे तो जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा सोशल रिलेशनशिप था।
और ना ही गुरचरण कौर
और मिसेस गांधी। मेरे ख्याल में उनका जो भी रिश्ता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ।
पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के आयात और निर्यात पर अपना शोध किया था। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय में बतौर सलाहकार रखा गया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह उनकी जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में लिखती हैं।
मेरे पिता नम्रता को ताक पर रखकर कहा करते थे कि उस समय विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। वो विदेश व्यापार मंत्रालय में बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार काम कर रहे थे। उनके मंत्री थे ललित नारायण मिश्र। एक बार वो मनमोहन से नाराज हो गए क्योंकि वो कैबिनेट को भेजे जाने वाले नोट से सहमत नहीं थे। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा कि तुम वापस नहीं जाओ। उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया और इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई।
मनमोहन सिंह ने इसके बाद योजना आयोग के सदस्य और उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख के तौर पर काम किया। 1991 में नरसिम्हा राव ने उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया। नरसिम्हा राव के जीवनीकार विनय सीतापति बताते हैं।
नरसिम्हा राव के आइडियाज की कमी नहीं था, उनको एक चेहरा चाहिए, एक मुखौटा चाहिए था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन आईएमएफ और डोमेस्टिक ओपोनेंट्स को असुवेज कर सके। तो जून 1991 पीसी अलेक्जेंडर उनके सबसे बड़े एडवाइजर हैं और नरसिम्हा राव पीसी अलेक्जेंडर से पूछते हैं, आई वॉन्ट एन इंटरनेशनली क्रेडिबल फेस एज फाइनेंस मिनिस्टर। अलेक्जेंडर ने उनको कहा कि आप आईजी पटेल से पूछिए। आईजी पटेल गवर्नर रिजर्व बैंक बन चुके थे और तभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर थे। तो नरसिम्हा राव ने हाँ किया, उन्होंने वो नाम वेंकट रामन को दिया जो प्रेसिडेंट थे और फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे। आईजी पटेल ने नहीं कहा। अलेक्जेंडर ने जब फोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी माँ बड़ौदा में थी, वो बहुत ओल्ड थी, ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। फिर पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम बोला। जून 20th इवनिंग, वन डे बिफोर दी स्वेरिंग इन सेरेमनी, पीसी अलेक्जेंडर ने रात को मनमोहन सिंह को फोन किया। तब मनमोहन सिंह जी सो रहे थे क्योंकि वो फॉरेन से आए थे और फिर उनको उठाया गया और उनको कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। मनमोहन सिंह ने मुझे कहा कि 100% उसको बिलीव नहीं करते थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये बोलते रहते हैं जब तक नरसिम्हा राव फोन पे न बात करें तो वो उनपे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जून 21st 12 बजे द स्वेरिंग इन सेरेमनी वॉज स्केड्यूल्ड। मेरे ख्याल से 8-9 बजे सुबह मनमोहन सिंह जी अपने घर से यूजीसी ऑफिस गए, वो यूजीसी चेयरमैन थे, और वहां पे एक फोन कॉल आया। नरसिम्हा राव फोन पे थे, उन्होंने कहा कि भाई आई वांट यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, आप 12 बजे स्वेरिंग इन है, आप एक घंटे पहले आइए क्योंकि मुझे वो स्पीच के बारे में बात करना है। और फिर नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि इफ वी सक्सीड वी विल बोथ गेट द क्रेडिट, इफ वी फेल यू विल हैव टू गो।
मनमोहन सिंह ने उस चुनौती को स्वीकार किया और भारत के सबसे सफल वित्त मंत्री कहलाए। संजय बारू बताते हैं कि निजी बातचीत में भी मनमोहन सिंह बहुत रिजर्व्ड हुआ करते थे। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन और चीन के प्रधानमंत्री हू जिनताओ भी उनकी तरह कम बातूनी हों तो बातचीत आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होती थी।
वो बहुत शाय और क्वाइट थे। दूसरे लोग जब बात करते थे तो खुश थे कि और कोई बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीटिंग्स में भी ऐसे नेता लोगों को पसंद करते थे जो बहुत बात करते, जैसे अफगानिस्तान के कारजाई। कारजाई वाज वेरी सोशल मैन और कारजाई बहुत बोलते थे, और ये मनमोहन सिंह को ठीक लगता था कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर पे भी ज्यादा ऐसा ही उनका ज्यादा बातचीत नहीं होता था, तो यू वुड ऑलवेज रिमेन वेरी क्वाइट।
और जो लीडर्स जो कम बोलते थे वो मनमोहन सिंह नहीं पसंद करते थे,
मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट। अगर आप भी कम बोले और वो भी कम बोले तो बोलना ही नहीं होता, इट वुड बी डिफिकल्ट।
मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने उन पर लिखी जीवनी में उनकी शख्सियत के दूसरे और पक्षों पर भी रोशनी डाली है।
हर 2 महीने पर हमारा पूरा परिवार बाहर खाने जाता था। हम या तो कमला नगर की कृष्णा स्वीट्स में दक्षिण भारतीय खाना खाते थे या दरियागंज के तंदूर में मुगलाई खाना। चीनी खाने के लिए हम मालचा रोड पर फ्यूजिया रेस्टोरेंट में जाते थे, और चाट के लिए हमारी पसंद होती थी बंगाली मार्केट। मेरे पिता को ना तो अंडा उबालना आता था और ना ही टेलीविजन ऑन करना। हमें उनकी सरकारी गाड़ी पर बैठने का कभी मौका नहीं मिला। अगर हम किसी जगह पर जा रहे हूँ जो उनके रास्ते में पड़ती थी तब भी वो हमें अपनी सरकारी कार में नहीं बैठने देते थे। किन्हीं कारणों से उन्हें अपनी चाल पर भी नियंत्रण नहीं था। एक बार जब वो तेज चाल से चलने लगते थे तो उनकी चाल कभी धीमी नहीं पड़ती थी और उनके साथियों को उनके साथ चलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी।
संजय बारू बताते हैं कि मनमोहन सिंह को भाषण देना बिल्कुल नहीं आता था। उनकी आवाज बहुत पतली थी और वो सही शब्दों पर जोर नहीं दे पाते थे। शुरू में देश को संबोधित करने से पहले वो अपने भाषण का अभ्यास किया करते थे।
2004 में जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच और नेशनल एड्रेस टू द नेशन, तब प्रैक्टिस करते थे, इसलिए कि वो पहला एक्सपीरियंस था उनका। 2004 अगस्त में भी जब लाल किले से उनका इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुआ, वो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, मगर उसके बाद जब आदत पड़ गई तो ये प्रैक्टिस।
और स्पीच उनकी हिंदी में लिखी होती थी?
उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, गुरुमुखी या उर्दू। उनका जो एजुकेशन हुआ था बचपने से, घर में गुरुमुखी पढ़ते थे और स्कूल में उर्दू में पढ़ते थे, तो इधर उर्दू स्क्रिप्ट में होगा या गुरुमुखी में होगा।
हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को खत्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें।
मनमोहन सिंह की मुलायम छवि को देखते हुए कम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें गुस्सा भी आता था।
वो गुस्से करते थे, लाल हो जाता था उनका चेहरा। मुझसे भी 2-3 बार मेरे को भी डांट पड़ी। मैं ऐसा कुछ करता जो नहीं मानते थे तो बुला के कहते थे, व्हाई डिड यू डू दिस। उनका शॉर्ट टेम्पर भी है, ज्यादा लॉन्ग फ्यूज है, मतलब फ्यूज इज नॉट शॉर्ट।
और आवाज ऊंची होती थी?
आवाज ऊंची होती थी। एक बार वो जयराम रमेश पे खफा हो गए, इसलिए कि जयराम रमेश ने कुछ ऐसा लीक कर दिया था। एक सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखा था, तो उस चिट्ठी को जयराम ने मीडिया को लीक किया और उसके बारे में बहुत खफा हो गए और उनको जयराम को फ़ोन पे डांटा और डांट के जयराम पता नहीं क्या कह रहे थे, मैं बैठा हुआ था वहाँ, एकदम फ़ोन को नीचे धाड़ बोल के लग दिया, बैंग कर दिया।
वाजपेयी और मनमोहन सिंह के काम करने के ढंग की तुलना करते हुए संजय बारू कहते हैं कि वाजपेयी के जमाने में ब्रजेश मिश्रा प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे और मनमोहन सिंह के जमाने में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के सचिव की तरह व्यवहार करते थे।
एक जोक था, कई लोग हमारे साथ काम करते थे जो वाजपेयी जी के कार्यालय में भी काम कर चुके थे और उनका ये मानना था कि वाजपेयी जी बुजुर्ग थे और ज़्यादा पॉलिटिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर कम थे, मनमोहन सिंह ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर थे, पॉलिटिशियन कम थे। तो वाजपेयी जी का जो स्टाइल था वो ये था कि जनरल डायरेक्शंस दें और अपने ऑफिशियल्स को छोड़ दे के डिटेल काम ऑफिशियल्स करें। तो वो ब्रजेश मिश्रा जी को मिलते थे, नाश्ते पे मिलते थे, सुबह 3-4 घंटे काम कर लिए, दूसरे पॉलिटिशियंस को मिलना, पॉलिटिकल काम में वो मशरूफ थे, तो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं देखते थे। ब्रजेश मिश्रा जी प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाते थे, मगर मनमोहन सिंह जी का स्टाइल अलग था, वो तो पॉलिटिकल लीडर थे नहीं, पॉलिटिकल काम सब सोनिया जी देखती थी। तो मनमोहन सिंह जी ज़्यादा से ज़्यादा समय मीटिंग्स में बैठते थे, कई लंबे चौड़े मीटिंग्स होते थे, रिव्यू ऑफ NREGA, रिव्यू ऑफ भारत निर्माण, रिव्यू ऑफ एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, तो 2-3 घंटे बैठ के क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है, ये काम कैबिनेट सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है, प्रधानमंत्री का तो पॉलिटिकल रोल है। तो मैं उन्हें चिढ़ाता था कि ब्रजेश मिश्रा जी को कहते थे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज लाइक प्राइम मिनिस्टर और आपके बारे में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज लाइक प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
रेहान पटेल, BBC दिल्ली।
और अब खेल समाचारों के साथ राखी शर्मा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी आज भारत का ही दबदबा देखने को मिला। भारत ने आज अपनी पारी 7 विकेट के नुकसान पर 622 रन पर घोषित की, जिसके बाद दिन का खेल रुकने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गवाए 24 रन बना लिए थे। क्रीज पर मार्कस हैरिस 19 और उस्मान ख्वाजा 5 रन बनाकर नाबाद हैं। पहले दिन 4 विकेट पर 303 रन बनाने वाली भारतीय टीम के बल्लेबाज दूसरे दिन भी छाए रहे। सिडनी में शतक के साथ शुरुआत करने वाले चेतेश्वर पुजारा ने दूसरे दिन भी पिच पर टिके रहने का धैर्य दिखाया और 193 रन बनाकर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा अगर दोहरा शतक बनाने में कामयाब होते तो वो ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाते। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए 5वीं सबसे बड़ी पारी उन्होंने अपने नाम जरूर दर्ज करा ली। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी 241 रन की पारी सचिन तेंदुलकर के नाम है। वहीं ऋषभ पंत 159 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। पंत के टेस्ट करियर का ये दूसरा शतक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय विकेटकीपर हैं। साथ ही अब वो विदेशी धरती पर सबसे बड़ा स्कोर करने वाले भारतीय विकेटकीपर भी बन गए हैं। इसके अलावा हनुमा विहारी ने 42 और रविंद्र जडेजा ने 81 रनों का योगदान दिया। खास बात यह है कि भारत इस मैच में 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। ईशांत शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव आए हैं।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में रफाल डील के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का भाजपा सरकार पर भारतीय कंपनी HAL की अवहेलना करने का आरोप सरासर गलत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई अब 10 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े जाने माने वकील HS फुलका ने कहा है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस छोड़कर सभी पार्टियों ने उनका साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकार जमाल खाशुजी की हत्या के सिलसिले में सऊदी अरब की एक अदालत में शुरू की गई सुनवाई की आलोचना की है और कहा है कि अदालती कार्रवाई की निष्पक्षता के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जर्मनी अब तक के अपने सबसे बड़े हैकिंग हमले से निपटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हैकरों ने कई राजनेताओं और नामी हस्तियों की निजी जानकारी, जिनमें फ़ोन नंबर्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स शामिल हैं, ऑनलाइन सार्वजनिक कर दी है। जिन लोगों की जानकारी साझा की गई है उनमें राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर का नाम भी शामिल है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। अगला प्रसारण नमस्कार भारत समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।